शील निरूपण और चरित्र चित्रण का शेष अंश, पृष्ठ 74। सुमंत ने अयोध्या लौटकर राजा से लक्ष्मण की कही हुई बातें तो न कही, पर इस घटना का उल्लेख किए बिना उससे न रह गया। क्यों? क्या लक्ष्मण से उससे कुछ शत्रुता थी? नहीं, राम के शील का जो अद्भुत उत्कर्ष उसने देखा, उसे वह हृदय में न रख सका। सुशीलता के मनोहर दृश्य का प्रभाव मानव अंतःकरण पर ऐसा ही पड़ता है। सुमंत को राम की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का दोष अपने ऊपर लेना कबूल हुआ, पर उस शील सौंदर्य को झलक अपने ही तक वह न रख सका। दशरथ को भी उसने दिखाया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस अंतिम झलक ने राजा को और भी उस मृत्यु के पास पहुंचा दिया होगा जो आगे चलकर दिखाई गई है। इसे कहते हैं घटना का सूक्ष्म क्रम विन्यास। पैराग्राफ चेंज। राम और लक्ष्मण के स्वभाव भेद का बस एक और चित्र दिखा देना काफी होगा। समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र से विनय करते करते राम को 3 दिन बीत गए। तब जाकर राम को क्रोध आया और भय बिनु होइ न प्रीति वाली नीति की ओर उनका ध्यान गया। वे बोले, लक्ष्मीन बाण सरासन आनु, सोखाई बारिधि बिसिक कृशानु, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के भावा। जिसके बाण खींचते ही उठी उ दधि उर अनंत ज्वाला। उसने पहले 3 दिनों तक हर प्रकार से विनय की। विनय की मर्यादा पूरी होते ही राम ने अपना अतुल पराक्रम प्रकट किया, जिसे देख लक्ष्मण को संतोष हुआ। विनय वाली नीति उन्हें पसंद न थी। एक बार दो बार कह देना ही वे काफी समझते थे। वाल्मीकि ने राम के वनवास की आज्ञा पर लक्ष्मण के महाक्रोध का वर्णन किया है, पर न जाने क्यों वहां तुलसीदास जी इसे बचा गिए हैं। चित्रकूट में अपनी कुटिलता का अनुभव करती हुई कैकेयी से राम बार बार इसलिए मिलते हैं कि उसे यह निश्चय हो जाए कि उनके मन में उस कुटिलता का ध्यान कुछ भी नहीं है और उसकी ग्लानि दूर हो। वे बार बार उसके मन में यह बात जमाना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें उसका कुछ भी दोष नहीं है। अपने साथ बुराई करने वाले के हृदय को शांत और शीतल करने की चिंता राम के सिवा और किसको हो सकती है? दूसरी बात यह ध्यान देने की है कि राम का यह शील प्रदर्शन उस समय हुआ जिस समय कैकेयी का अंतःकरण अपनी कुटिलता का पूर्ण अनुभव करने के कारण इतना द्रवीभूत हो गया था कि शील का संस्कार उस पर सब दिन के लिए जम सकता था। गोस्वामी जी के अनुसार हुआ भी ऐसा ही। कैकेयी जौलो जियती रही, तौलो बात मतु सो मुह, भरी भरत न भूली कही। मानी राम अधिक जननी ते, जननीहु गस न गही। इतने पर भी कहीं गास रह सकती है? गृहस्थ जीवन के दाम्पत्य भाव के भीतर सबसे मनोहर वस्तु है उनकी एक भार्या की मर्यादा। इसके कारण यहां से वहां तक जिस गौरवपूर्ण माधुर्य का प्रसार दिखाई देता है वह अनिर्वचनीय है। इसकी उपयोगिता का पक्ष दशरथ के चरित्र पर विचार करते समय दिखाया जाएगा। पृष्ठ 75। भक्तों को सबसे अधिक वश में करने वाला राम का गुण है सरलागत की रक्षा। अत्यंत प्राचीन काल से ही शरणागत की रक्षा करना भारतवर्ष में बड़ा भारी धर्म माना जाता है। इस विषय में भारत की प्रसिद्धि सारे सभ्य जगत में थी। सिकंदर से हारकर पारस का सम्राट दारा जब भाग रहा था, तब उसके तीन साथी सरदारों ने विश्वासघात करके उसे मार डाला। उनमें से एक शकस्थान कोष्ठक में सिस्तान का क्षत्रप वर्जयंत था। जब सिकंदर ने दंड देने के लिए इन तीनों विश्वासघातियों का पीछा किया, तब वर्जयंत ने भारतवासियों के यहाँ आकर शरण ली और बच गया। प्राचीन यहूदियों ने एक जत्थे का गांधार और दक्षिण में शरण पाना प्रसिद्ध है। इस्लाम की तलवार के सामने कुछ प्राचीन पारसी जब अपने आर्य धर्म की रक्षा के लिए भागे, तब भारतवर्ष की ही ओर उनका ध्यान गया, क्योंकि शरणागत की रक्षा यहाँ प्राण देकर की जाती थी। अपनी हानि के भय से शरणागत का त्याग बड़ा भारी पाप माना जाता है। शरणागत कहजे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्ही बिलोकत हानि। शरणागत की रक्षा की चिंता रामचंद्र के हृदय से दारुण शोक के समय में भी दूर न हुई। सामने पड़े हुए लक्ष्मण को देखकर वे विलाप कर रहे हैं। मेरु सब पुरुषार्थ थाको, विपति बिटावन बदुबाहु बिनु करो भरोसो काको। सुनि सुग्रीव साचहु मो सम फेरयो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हों तज्जो लसन सो भ्राता। गिरिकानन जैहें शाखा मृग हौ पुनि अनुज संघाती, वह है कहा विभीषण की गति रहे सोच भरी छाती। राम के चरित्र की इस उज्ज्वलता के बीच एक धब्बा भी दिखाई देता है, वह है बाली को छिपकर मारना। वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों ने इस धब्बे पर कुछ सफेद रंग पोतने का प्रयत्न किया है, पर हमारे देखने में तो यह धब्बा ही संपूर्ण रामचरित को उच्च आदर्श के अनुरूप एक कल्पना मात्र समझे जाने से बचाता है। यदि एक यह धब्बा न होता तो राम की कोई बात मनुष्य किसी न लगती, और वे मनुष्यों के बीच अवतार लेकर भी मनुष्यों के काम के न होते। उनका चरित्र भी उपदेशक महात्माओं की केवल महत्व सूचक फुटकल बातों का संग्रह होता। मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति सूचित करने वाले समबद्ध काव्य का विषय न होता। यह धब्बा ही सूचित करता है कि ईश्वरावतार राम हमारे बीच हमारे भाई बंधु बनकर आए थे और हमारे ही समान दुख सुख भोग कर चले गए। वे ईश्वरता दिखाने नहीं आए थे, मनुष्यता दिखाने आए थे। भूल चूक या त्रुटि से सर्वथा रहित मनुष्यता कहाँ होती है? इसी एक धब्बे के कारण हम उन्हें मानव जीवन से तटस्थ नहीं समझते। तटस्थ क्या कुछ भी हटे हुए नहीं समझते हैं। अब थोड़ा भरत के लोक पावन निर्मल चरित्र की ओर ध्यान दीजिए। पृष्ठ 76। राम की वन यात्रा के पहले भरत के चरित्र की श्रृंखला संगठित करने वाली कोई बात हम नहीं पाते। उनकी अनुपस्थिति में ही राम के अभिषेक की तैयारी हुई। राम वन को गए, ननिहाल से लौटने पर ही उनके शील स्वरूप का स्फुरण आरंभ होता है। ननिहाल में जब दुख स्वप्न और बुरे शकुन होते हैं, तब वे माता पिता और भाइयों का मंगल मनाते हैं। कैकेयी के कुचक्र में और मात्र के योग के संदेह की जड़ यहीं से कट जाती है। कैकेयी के मुख से पिता के मरण का संवाद सुन वे शोक कर ही रहे थे कि राम के वनगमन की बात सामने आती है, जिसके साथ अपना संबंध नाम मात्र का सही समझकर वे एकदम ठक हो जाते हैं। ऐसी बुरी बात के साथ संबंध जोड़ने वाली माता के रूप में नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर के लिए उसकी ओर मातृभाव हट सा जाता है। ऐसा उज्ज्वल अंतःकरण, ऐसी घोर कालिमा की छाया का स्पर्श तक सहन नहीं कर सकता। यह छाया किस प्रकार हटे, इसी के यत्न में वे लग जाते हैं। हृदय का संताप बिना शांतिशील समुद्र राम के सम्मुख हुए दूर नहीं हो सकता। वे चट विरह व्यथित पुरवासियों को लिए दिए चित्रकूट में जा पहुँचते हैं और अपना अंतःकरण भरी सभा में लोकादर्श राम के सम्मुख खोलकर रख देते हैं। उस आदर्श के भीतर उसकी निर्मलता देख वे शांत हो जाते हैं और जिस बात से धर्म की मर्यादा रक्षित रहे उसे करने की दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं। पैराग्राफ चेंज। भरत ने इतना सब क्या लोक लज्जा वश किया? नहीं, उनके हृदय में सच्ची आत्मग्लानि थी, सच्चा संताप था। कहीं ऐसा न होता तो अपनी माता कैकेयी के सामने वे दुख और क्षोभ न प्रकट करते? यह आत्मग्लानि ही उनकी सात्विक वृत्ति की गहनता का प्रमाण है। इस आत्मग्लानि के कारण का अनुसंधान करने पर हम उस तत्व तक पहुँचते हैं जिसकी प्रतिष्ठा रामायण का प्रधान लक्ष्य है। आत्मग्लानि अधिकतर अपने किसी बुरे कर्म को सोचकर होती है। भरत जी कोई बुरी बात अपने मन में लाए तक न थे, फिर यह आत्मग्लानि कैसी? यह ग्लानि अपने संबंध में लोक की बुरी धारणा के अनुमान मात्र से उन्हें हुई थी। लोग प्रायः कहा करते हैं कि अपना मन शुद्ध है तो संसार के कहने से क्या होता है। यह बात केवल साधना की एकांतिक दृष्टि से ठीक है, लोक संग्रह की दृष्टि से नहीं। आत्मपक्ष और लोक पक्ष दोनों का समन्वय रामचरित का लक्ष्य है। हमें अपनी अंतर्वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक रखनी चाहिए और अपने संबंध में लोक की धारणा भी अच्छी बनानी चाहिए, जिसका प्रभाव लोक पर न पड़े उसे मनुष्यत्व का पूर्ण विकास नहीं कह सकते। यदि हम वस्तुतः सात्विकशील हैं पर लोक भ्रमवश या और किसी कारण हमें बुरा समझ रहे हैं तो हमारी सात्विकशीलता समाज के किसी उपयोग की नहीं। हम अपनी सात्विकशीलता अपने साथ लिए चाहे स्वर्ग का सुख भोगने चले जाएं, पर अपने पीछे 10-5 आदमियों के बीच 10-5 दिन के लिए भी कोई शुभ प्रभाव न छोड़ जाएंगे। ऐसे एकांतिक जीवन का चरित्र जिसमें प्रभविश्रुता न हो रामायण का लक्ष्य नहीं है। रामायण भरत ऐसे पुण्य श्लोक को सामने करता है जिनके संबंध में राम कहते हैं, मिटि ही पाप परपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। जिन भरत को अयस की इतनी ग्लानि हुई, जिनके हृदय में धर्म भाव कभी न हटा, उनके नाम के स्मरण से लोक में यश और परलोक में सुख दोनों क्यों न प्राप्त हो?